ओम शांति, ओम शांति, गुड मॉर्निंग काका, गुड मॉर्निंग, गोल्डन मॉर्निंग ना, गोल्डन एज में जाना है इसलिए डायमंड मारने के अभी है। हमारे लिए भी संगम युग पर एक एक घड़ी, एक एक मिनट बहुत वैल्यूबल है, समय वैल्यूबल है। जिसको समय की वैल्यू है ना, वो संयम की वैल्यू को समझता जाता है। भगवान हमको और हमारे को संयम की हमारी वैल्यू बढ़ाता जा रहा है। कहते ध्यान रखो अपने ऊपर और कुछ नहीं कहता है, टेंशन फ्री रहो। सिर्फ ए आगे रखो तो टेंशन से सब सहज है, टेंशन से सब मुश्किल है। शब्द आएगा डिफिकल्ट, डिफिकल्टी में टेंशन, टेंशन में डिफिकल्टी, पर अटेंशन में नो प्रॉब्लम। जिसका संयम पर अटेंशन है, भगवान का भी उस पर ध्यान है। ये हमारा प्यारा जो स्लोगन लिखते हैं ना, मुझे याद है मैं जब जयपुर गई थी 4-5 साल पहले, तो किसी के मकान में नया बनाया था, तो उसने कहा हमारे घर में ठहरे, तो लिख दिया था तो भगवान का ध्यान रखते हैं उनका भगवान ध्यान रखता है, लिखा हुआ था अच्छा स्लोगन। अभी वो अच्छा लगा, अभी जान देखती हूं ना वो लगा देते हैं। जो भगवान का ध्यान रखते हैं, भगवान को ध्यान में रखते हैं, ध्यान रखते मना हर बात में भगवान मेरा है, वो ध्यान में बात है, तो भगवान देखता है इसका सारा मेरे ऊपर ही डिपेंड है और कुछ का है नहीं। कहीं बुद्धि जाती नहीं है, उसको कुछ चाहिए नहीं, समझता यहां से क्या मिलेगा मुझे, जो बाप से मिलता है अंदर नशा है, जहां से प्राप्ति होती है ऑटोमेटिक बुद्धि खींचती है। तो हम भगवान का ध्यान नहीं करती है, पर प्राप्ति खींचती है ना। मैं आप लोगों को थोड़ा आज प्यार करती हूँ, आप कहेंगे सदैव हम लोग ऐसे ऐसे करती है, पर आज प्यार करते हो क्यों? 6:30 क्लास पे आ जाते हो, मधुबन में 7 बजे भी एक्यूरेट नहीं आते हैं भाई, ऐसा बता देना मधुबन वालों को, वह 7 बजे क्लास होता है। आप लोग अच्छे हो, कहीं कहीं से दूर दूर, वो तो मधुबन में रहते हैं तो 7 बजे एक्यूरेट नहीं आते, धीरे धीरे आते हैं। अब कहां कहां से टाइम पर आओ, एक बाप के लिए प्यार है, रिगार है, पढ़ाने वाले के लिए जिसका रिगार्ड है वो प्यार करता है। मुझे क्लास में आने समय हमेशा ब्रह्मा बाबा सामने आता है, बच्ची चलो मैं आता हूं क्लास में, जाएंगी सर बाबा गुड मॉर्निंग, हाँ चलो मैं आता हूं, अब बाबा टाइम पर पंक्चुअल एकदम। हमारी मम्मा भी टाइम पर पंक्चुअल, अच्छा स्टूडेंट वो जो टाइम पर पंक्चुअल हो गए, मार्क्स मिल जाती है, और कभी एब्सेंट ना होए, जो थोड़ा अपसेट होते हैं ना वो एब्सेंट हो जाते हैं, मार्क्स मिलती है, ऐसे थोड़ी पढ़ाई है ये। देखते जाना है कितनी मेरी मार्क्स जमा हो रही है, ऐसी तो कोई बात नहीं हो जाती जो सारी मार्क्स कट हो जाए जो जमा की हुई। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया में रहो पर टेंशन फ्री रहो, मेरा भाई टेंशन फ्री, ओके ओके टेंशन फ्री, बस ही बोला है। ये मेरा बहुत अच्छा भाई है, आप लोग बताएंगा मैं कौन हूं, मेरा भाई है ना, यू आर माय ब्रदर ना, रियली अच्छा, ये ऐसा भाई ऐसी बहन है जो आप लोगों से भी आगे जाने वाले हैं। अब भले 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से, 10 साल से, ये समझा क्योंकि चाहिए क्या मेरे को, कभी देखो मुझे क्या चाहिए। दुनिया में जो कुछ है झूठ है, विनाशी है, आज है कल नहीं रहेगा, अभी भी नहीं है, अभी मैं उसको मेरा समझू ना तो अन्य का कहेंगे मेरा है? मैं क्यों कहूं मेरा, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी राजा ही है ये, मेरे को सब कुछ है, हाथ मेरे ऐसे सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, दो गुण से कहते सब कुछ है। संतुष्ट है, कुछ नहीं चाहिए है? मधुबन में चलो, बाबा की कुटिया में बैठा है, बाबा कुटिया है, बाबा ने खुद कुटवाया, अब बनवाई थी बनाई थी, कुटिया में बैठे बाबा ने कितनी सेवा की होंगे, कितनी आत्माओं को शांति की शक्ति भगवान से दिलाई होंगी। अभी जा कुटिया में बैठो सिर्फ दो मिनट, कितना बल मिलता है, वहां बैठे पत्र लिखते, बाबा कोई ऑफिस में बैठ के पत्र नहीं लिखता है, हाँ ऑफिस में आता था पत्र ऐसे बैठ के लिखता था, कभी टेबल कुर्सी पर बैठ के नहीं लिखा। जिस दिन बाबा अव्यक्त होता है रात को, सुबह को 40 पत्र लिखे, 40 पत्रों का जवाब बाबा ने लिखा, उस दिन का भी लिखा हुआ पत्र मेरे पास था। इतना है बाप का बच्चों से प्यार, थोड़ा अंदाजा तो लगाएं। सारे चक्कर के अंदर बस शरीर के अनेक प्रकार अनेक जन्म लिए हैं, शरीर के अनेक बाप मिले हैं, जितने जन्म मिले लिए होंगे उतने बाप मिले होंगे, बाप के बिना जन्म तो नहीं हुआ होगा ना, मां बाप मिला होगा ना, पर ऐसा बाप जो सबका है एक, पर वो कहता है मैं तेरा हूं, पर्सनल कहता है तेरा हूं, मैं क्यों ते मेरा है, हाँ आज जो अमृत वेले बैठे थे ना, मुझे उनसे पूछना था, इतना बाबा प्यार करता है, जानता है ना मेरे बच्चे माया में ने बहुत धोखा दिया, ऊपर से प्यार किया अंदर से धोखा दिया, झूठा बना दिया, मैं बच्चों को प्यार करके सच्चा बनाने चाहता हूं। परमात्मा सत्य है, इतना बुद्धि आ जाए। परमात्मा एक ही, भले ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है पर वो भी उसकी रचना है, उनके बच्चे हैं तीनों, तीनों का भी बाप वो है। ये बात बैठ करके अंदर मनन चिंतन में रखने से समझ में आ जाती है। सिर्फ अपन को समझे हम बच्चा है तो बच्चे को बच्चा माना, आगन से पहले भरे है पर ईश्वर का तो बच्चा होना। अभी हम कहेंगे क्या, 70 साल हो गए ब्रह्मा कुमारी बने, मैं 70 साल की ब्रह्मा कुमारी हूं? नहीं, बच्चा हूं। कौन है जिस, आप लोगों में से जिसको अंदर से मैं बच्चा हूं, जैसा मेरा बाप भोला नाथ है ना, मैं भोली 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 भाली बच्ची हूं। बहुत बुद्धिमान नहीं हूं? फटाफट फटाफट बुद्धि ऐसी चलती है, शांति नहीं होती है। बुद्धि शांत, उसका बच्चा होना। दुखहर्ता शांति दाता मेरा बाप है ना। बाप क्या करता है मैं देखती हूं ना, कैसा भी दुखी आत्मा है अशांत आत्मा है उसको प्यार करके शांति और प्रेम दे देता है। मेरा बाप ऐसा है ना, क्या सिखाता है। जो दुनिया नहीं जानती, विद्वान पंडित नहीं जानते, कोई धर्म वादे भी नहीं जानते, वो मैं तुम्हें बताता हूं। सारी सृष्टि के, मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का राह समझा देता हूं। तुम मेरे बच्चे हो ना, तुम आत्माएं भी पहले कितनी अच्छी थी, जब घर चक्कर से ऊपर से आई, तो स्वच्छ थी, सतों प्रधान थी, चक्कर में आते आते कलह कम होती गई, द्वापर आया भक्ति बल की, पर माया रावण पांच विकारों ने अच्छा फंसा लिया। समझ भी रहे हैं रावण है, माया है, दुख देती है, पर तुम करें क्या। तो जब हम पहले पहले यहां लंदन में आए ना, तो पहला चित्र लगा हुआ था कमरे में, आओ ना, वो चित्र पता नहीं कहां चला गया। ब्रह्मा कुमारी लोटा डाल रही है, वो सो रहा है, पानी का लोटा डाल रही है। माया रावण ऐसे पकड़ के बैठा हुआ था, वो नींद में भी पानी। तो अभी इंडिया में ना बराबर एक दूसरे लगाते हैं, तो कुंभकर्ण का जरूर करते हैं, वो पानी डाल रहा है, वो सुन करके पर ऐसे सो जाता, क्योंकि रावण कहता है सो जा अभी टाइम पर है, अभी तो तुमको ये करना है ये करना है ये करना है ये करना। बाप कहते जागो, ये है ना, जागेंगे तो और को जगाएंगे। पहले कईयों को हमारे से तकलीफ होती थी, मेरे से होती थी, खुद जागती है तो सबको जगाती है सारा दिन। अरे सोने तो दो ना, मैं कह नहीं सोने का समय नहीं है अभी। जो जागता है वो औरों को जगाता है, जो खुद सोने चाहता है दूसरे को अब सो जा, अभी टाइम नहीं है, और कुछ काम नहीं करने का भाई, मैंने सब जागरना है। क्यों है, क्यों जागेंगे तो भगवान कहेगा अभी दुनिया में अंधकार भी है और मनुष्यों की आंखें ये जो है ना, सो दुनिया को देखने के लिए अपने को देखने है नहीं, उनकी आंखें खुले, ये जो कल की वाणी में था, ये आंख खुले ये बंद है, अपन को देखने की आंख बंद है, बाकी बाहर दुनिया को ऐसे ऐसे देखने की आंखें, टेलीविजन भी है तो न्यूज़पेपर भी है तो फलाना भी है, पता क्या क्या है वो देखने के लिए, वो समाचार लेने के लिए, वो सब अंदर चला जाता है। बाप कहते हैं बच्चे अंतर्मुखी बन, मैं तुम्हारे अंतर्मुखी बनो, या ये आंख खुलेंगी तो अंतर्मुखी बनेंगे, अंतर बनने से उसका ध्यान करो, पहले अंदर जाओ उसका ध्यान करो, परामर्श आता है, सिंपल बात है सर, अंतर बार आंखें खुली है। ये भी हम पहले पहले जब योग में शुरू किया तो बाबा ने कहा बच्चे आंखें खुली रखो, तो बाबा को कहा बाबा आंखें खुली ऐसे ऐसे हो जाता है, नहीं आंखें बंद कर, नहीं आंखें बंद करेंगे तो बुद्धि अंदर और चली जाएंगी, आंखें खुली रखो, देवताओं की आंखें खुली है, शंकर की तपस्या में आंखें खुली है, आंखों में ही दया प्रेम और सच्चाई जो अंदर है ना, वो आंखों द्वारा औरों को मिलती है, जो अंदर है ना वो इनके द्वारा मिलता है, अंदर कुछ मिक्सचर है ना वो भी इनके द्वारा पता चल जाता है, मैं खुश हूं या ना खुश हूं बात अंदर की है, पर पता यहां से चल जाता है, इसलिए बाबा कहते अंतर अपने आप को देख, अपन को अंदर से देख, जिसमें गीत है मुख रात देख ले प्राणी, अंदर प्राणी प्राणी आत्मा अपन को देख, कितने मैंने पाप किए है कितने पुण्य किए है, पुण्य थोड़े किए है पर सबको बताया है, पता चले सबको, और पाप जो किए छिपाए है। बाबा कहता है हे आत्मा मैं कल्याणकारी हूं, तुम मेरा बच्चा बना है, तुमको विश्व कल्याणकारी बनाऊंगा, क्या समझे है, सिर्फ तुम ये समझो मैंने क्या पाप किए, पाप क्या है पुण्य क्या है, अब भी मेरे को याद ऐसे करो जो पास्ट इज पास्ट, अच्छा हो गया भगवान मैंने किया, भगवान कहते अच्छा दे अब मान में आकर के किया, माया के बस किया, अब तुम मेरा बनो ना तो नहीं मैं नाश कर दूंगा, तीन काम करता है भगवान, भगवान इसमें मैं भगवान माना भाग्य विधाता बाप, कहते तीन काम तुम सिर्फ सच्चा आज्ञाकारी मेरा बच्चा बनो, अच्छा साइलेंस सच्चा आज्ञाकारी बन के बैठो,
जगालो होगा दूर अंधेरा, होगा दूर पुण्य सवेरा
ये भी जो बाबा ने बीच में सैलेस में बैठने का नियम बना के दिया है ना, इस नियम से बहुत फायदा हुआ है। सारे दिन में जितना बारी ट्रैफिक कंट्रोल का है, अभी तो हर घंटे का साइलेंस में बैठने का, भाई 10:30-12 शाम को रात को, परंतु अभी तो हर घंटे। दो तीन मिनट भी साइलेंस में जाने से अंदर साइलेंस में रहने की आदत ही बनते हैं। नेगेटिव व्यर्थ खत्म हो जाता है, पॉजिटिव प्योर पावरफुल संकल्प पैदा होने आदत ही हो जाते हैं। सिंपल है। तभी हम बता रही थी तीन बातों की, बाबा हमको मदद करता है बहुत। एक तो समझदी, बच्चे तुमने इतने पाप क्यों किए, मैं समझता हूं अनेक जन्म पर किए है, उसमें कर्मों का बोझा है, आत्मा पर मैली हो गई है, उसके लिए इतनी याद में रहो मेरे, जैसे लगन की अग्न में ऐसी तेज हो जो मैं जिम्मेवारी उठाता हूं, तुम्हारे विक्रम विनाश कर दूंगा, विक्रम तुमने किए पर मैं विनाश कर दूंगा, तुम आत्मा शुद्ध शांत बन जाएंगे अभी। फिर इस जन्म में जो तुमने पाप किया है तो बाबा ने आगे, हम कराची में तो कहा था लिखो, पांच पांच कापियां नोटबुक भर भर के लिखा, फिर चुका नहीं लिखो, इतना नहीं लिखो, सिर्फ ये महसूस करो मैंने इस जन्म में जो पाप किया है अब नहीं करेंगे, मैं माफ कर दूंगा, पूर्व जन्मों का नाश कर दूंगा, इस जन्म का माफ कर दूंगा, पर सिर्फ ये तो कहना पड़ेगा, बाबा मैंने किया है, मुझे पावन बनना है, बाबा मुझे बनना है तो माफ करूंगा ना। तीसरा, अभी यज्ञ इसलिए रिजर्व है, तुम पराई अच्छी तरह पढ़ो, सेवा करो, श्रेष्ठ कर्म करो, उसकी शक्ति भी दे दूंगा, शिक्षा भी दूंगा, ये करो, करने की शक्ति भी दूंगा, तीन काम इकट्ठे, अनुभव से कहती हूं। अगर तीनों काम इकट्ठे नहीं है ना, बल्कि सेवा करता है पर पूर्व के संस्कार खत्म नहीं हुए हैं, और अब भी जो इस जन्म में भी जो किया है ना, रियलाइज करके माफी नहीं मांगी है, तो कर्म में वो श्रेष्ठता आ नहीं सकती, बल्कि करता है, श्रेष्ठता नहीं आ सकती है। बड़ी कर्मों की गुया गति है, अपन को आत्मा समझना, जैसे अंधे को आंख मिली, परमात्मा को मात पिता शिक्षक सतगुरु समझना, अंधकार तो चला गया, रास्ते का पता चला गया, अब कर जा, अब कहां क्या करने का है समझा गई, साथी मिल गया, जेल में पड़े हुए थे, जैसे दुनिया कराए वैसे करते थे, जैसे इच्छाएं कराए वैसे करते थे, जेल से छुड़ा दिया है, कितना थैंक्स मानो, शुक्रिया मानो भगवान का। अभी सिर्फ कहता है जो, एक तो मेरे को याद करो, दूसरे तीन बातें कहता है, एक डायरेक्शन, दूसरा श्रीमत, तीसरा इशारा, डायरेक्शन स्पष्ट है, फिर तुम बाबा मैं क्या, मैं बताता हूं तुम ये करो, बस किसे नहीं पूछो, मैं बताता हूं तुम्हारे भले के लिए, बताता हूं मुझो नहीं, घबराओ नहीं, मैं बताता हूं ये कर बच्चा, ये सिंपल बात है, वकील जज के पास जाने की जरूरत नहीं है, कई स्थूल लौकिक बातें भी कोई कहेंगे वकील के पास जाना पड़ेगा, फलाने कोर्ट पे जा, काय को जरूरत नहीं है, भगवान बैठा है, बुद्धिमानों का बुद्धि, मैं सच्चा हूं, नबी सच्चा हूं, सच्चा वो बनाता है, वो जो जजमेंट देगा ना है ही सुप्रीम जज, सुप्रीम सोल है पर सुप्रीम जज है, सबका एक है, तो ये भी एक स्मृति में रहे ना, हमारा बाप बाबा कहता था, बच्ची जो जज का बच्चा होता है ना उसको बड़ा नशा मेरा बाप है। पर जज का बच्चा कुछ करेगा तो पहले औरों को छुराएगा पर अपने बच्चे को फांसी पर पहले लटकाएगा। ये कहानी शास्त्रों में आती है। औरों को थोड़ा ठहर सकता है, उसका बच्चा अगर कुछ करे तो पहले इसको सजा मिले। इसलिए खबरदार होशियार रहने की घड़ी है। काम चलाऊ नहीं पुरुषा चलता है, दिखावा नहीं हो सकता, वो सब देखता है, जानता है ऐसा मेरा बाप है। पर मेरे को किसी का चिंतन नहीं करने का है। कहते तुम चिंतन नहीं करो, ये क्या करते मैं, तुम क्यों बीच में आते हो, तो अपनी कर। सर इतना शिक्षाएं स्पष्ट देता है, हे आत्मा तो अपना मित्र बन। पहले माया शत्रु के बाद अपना शत्रु नहीं बनना। अपने आप अपनी अपने लिए कोई ऐसी बात नहीं कर। सिंपल कहता है अपना मित्र बन, मैं तुम्हारा मित्र हूं। फिर भगवान जो सखा रूप में फ्रेंडशिप जो रखता है, वंडरफुल है उसकी फ्रेंडशिप है। बंधे मान है, जो साथ साथ है ना, सीखते जा रहे हैं ना, संभलते जा रहे हैं ना। और कोई बात न मन में न चिंतन में। अभी इस तरह से मुरली सुनो, मधुबन में पहली क्लास करा के फिर मुरली सुनाते हैं, या मुरली के बाद होता है। तो अभी ये भी आप लोगों ने छुट्टी दी है तो मुरली के पहले हमको किसके माँ वाक्य सुनते हैं, पर करना क्या, सुनना तो सही पर करना क्या है, करने के लिए सुन रहे हैं। बड़ी अच्छी ये है, वो पढ़ाई के बाद कमाई है, ये पढ़ाई में ही कमाई है हमारी, खुशी हो रही है। कर्जा भी उतर रहा है, अभी भी अच्छे है, भविष्य भी जमा है, है? ऐसी कमाई है, कान तो हिलाओ। कर्जा भी उतर रहा है, अभी भी अच्छे, हेल्दी वेल्दी हैप्पी, भविष्य भी अच्छा और गारंटी है, दुनिया का भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है हमारा वह तेरा भी हो जाएगा, भावना कर लेती है। पासी बोले ना, कौन मानते हैं दुनिया का भी हो जाएगा, ओके थोड़े उठा रहे आता। अरे मेरे भाई बहन है, मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी ज्योति जगी है। ज्योति जगना अर्थात विस्पत की दशा बैठना, विस्पत की दशा बैठने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो, सब कुछ अच्छा हो जाता है विस्पत दशा से। प्रश्न, सत्युग में हर घर की विशेषता क्या होगी, कलयुग में हर घर क्या बन गया है? उत्तर, सत्युग में हर घर में खुशियां होंगी, सबकी जो जगी हुई होंगी। कलयुग तो कलयुग में तो घर घर में गमी है, गमी है, दुख और गम में फर्क है, नहीं है, फर्क है, फर्क है दुख और गम में। बड़ा गम अंदर से, इतना इसे बाबा ने कहा बेगमपुर के बादशाह जहां गम होता ही नहीं है। दुख आता है तो जा भी सकता है, गम तो छोड़ता नहीं है, समझा। बाप आए हैं सबकी जो जगह ने, जैसे घर घर में गम, घर घर में गमी है, चिंता है, हर घर में अंधियारा है, आत्मा की ज्योत उजारी हुई है। बाप आए है अपनी ज्योत से सबकी ज्योत जगाने के लिए, वंडरफुल, वो ज्योति रूप है ना, अपनी ज्योत से सबकी ज्योत जगाने के लिए। किसकी ज्योत जगी है? उसकी ज्योति से ज्योत जगाते हैं। तो बाबा ने पीछे कहा है, फिर सिर्फ घी डालते जाओ ज्योत बुझाने, मैं जगाती हूं, तुम इतना तो काम करो ना। जिससे फिर घर घर में दिवाली होंगी, गीत माता ओ माता, ओम शांति। बच्चों ने मां की महिमा सुनी, यूं तो वास्तव में उपमा एक की होती है, बस मां को भी जगदम्बा बनाने वाला कौन, जन्म देने वाला पर भी कोई और है, और मां को भी जन्म किसने दिया। कहेंगे पतित पावन परम पिता परमात्मा ने, शिव ने दिया, पर भी महिमा हो जाती है एक ही ज्ञान सागर, पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव बाबा की। वो बैठ बच्चों को अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का और पतितों को पावन बनाने का राह समझाते हैं। आदि मध्य अंत का पर पतितों को कैसे पावन बनाना है ये राह समझाते हैं। ये तो बच्चे समझ गए हैं। इस समय पतित राज है जिसको रावण राज कहा जाता है। अभी दशहरा आता है ना, यह तो समझाया गया है। ये सब अंधश्रद्धा के उत्सव है। ऐसे तो कोई है नहीं, एक रावण था, लंका थी, गोपी का है। मेरे भाई को ये थोड़ी बातें सुना देना मूली के बाद, रावण क्या, दशहरा क्या, ये क्या। ऐसे तो कोई है नहीं, एक रावण था, लंका थी, लंका सीलान को कहा जाता है, वहां एक पुल बनाई। वास्तव में ये सब दंत कथाएं। ऐसे तो है नहीं दस सील वाला कोई रावण था, लंका में राज करता था, फिर तो उनकी एफिजी लंका में ही जलानी चाहिए। रावण को जलाने का भारत में रिवाज है और कई जगह नहीं जलाते हैं। अखबार में भी यहां के लिए पड़ता है। सबसे जास्ती यह उत्सव मैसूर का महाराजा मनाता है। उनका शायद इस दंत कथा से प्रेम दिखाई पड़ता है। मैंने देखा है जाकर मैसूर में दशहरा कैसे मनाते हैं। अब इस पर समझाना बच्चों का काम है। एफिजी तो दुश्मन का बनाकर जलाया जाता है, जैसे आगे हिटलर का एफजी बनाकर जलाते थे। मनुष्यों के तो दुश्मन होते ही है, अब रावण किसका दुश्मन था? भारतवासियों का दुश्मन था। पर दुश्मन को भी एक बार जलाया जाता है, ऐसे कोई भी नहीं करते जो हर वर्ष उस दुश्मन की एफजी बनाकर जला देवे। दुश्मन का एफिजी तो बनाते हैं पर वर्ष वर्ष तो नहीं जलाते हैं। ये रावण फिर कौन है जिसका भारत में बहुत समय से दस शीश वाला इफिजी बनाकर जलाते रहते हैं। ये दुश्मन कब से हुआ है जो मरता ही नहीं है? आखिर खत्म होगा या सदैव रहेगा ही? तुम मुझे जानते हो, भारती पवित्र था पर भारत को रावण ने अपवित्र बनाया है। अभी रावण राज्य है। अगर लंका का राजा था तो रानी भी होंगे। तुम तो ये बातें मानेंगे नहीं। रावण अभी तक जीता है वह क्या? कुछ भी समझते नहीं। जीता है पर उनकी एफिजी बनाकर जलाते रहते हैं। एक बार जलाया फिर क्या हुआ? हर वर्ष जलाते रहते हैं। अभी राम आने वाला है दशहरा तोरे। एक बार जलाया जाता फिर क्या? हर वर्ष जलाते रहते हैं। तो तुम बच्चों को समझाना चाहिए, जो कमेटी के बड़े बनते हैं ना, जैसे मैसूर का महाराजा है, वह बहुत मनाते हैं, फॉरेनर्स को भी देखने के लिए बुलाते हैं, समझेंगे ये ऐसा था। ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। नाटक बना देते हैं, रावण का भी नाटक बनाते हैं। तो इस रावण की बात पर समझाना है, ये बड़ी जबरदस्त बात है। अभी तुम रावण राज्य में बैठे हो, पूरी दुनिया को रावण राज्य कहा जाता है। पूरी दुनिया को, ऐसी दुनिया को किसने बनाया? रावण का राज्य है। अभी राम राज्य और रावण राज्य का राज तुमको समझाया है। रावण पांच विकारों को कहा जाता है। सृष्टि पर तो राज्य पर पर्सनल देखो, हमारे पर राज्य है क्या? उसका जलाया, उसको खत्म किया या नहीं? अभी राम राज और रावण पांच विकार का और कोई नहीं है। तुम समझ गए हो, रावण का राज अभी भारत में है। भारत में ही दशहरा दीपमाला आदि मनाते हैं। तो समझाना पड़े, अगर रावण जीता है तो रावण राज ठहरा ना। रावण है पतत बनाने वाला। तुम जानते हो पांच विकार जो समय सर्वव्यापी है उनको ही रावण कहा जाता है। पांच विकार सर्वव्यापी, जान जाओ है, कोई है दुनिया में कान को ना खाली जान पांच विकार न हो है? इंग्लैंड में, अमेरिका में, कोई कोने में, इंडिया में भी नहीं है कोई कोना जहां रावण का राज न हो। रावण है पतित बनाने वाला। तुम जानते हो पांच विकार इस समय सर्वव्यापी है, उनको ही रावण कहा जाता है। रावण के चित्र तो आगे दशहरे में निकलते थे, इसमें तिथि तारीख की भी डालनी पड़े। इस समय पतित का विनाश और पावन की स्थापना होती है। तुम पतित से पावन बन रहे हो, पावन बन जाएंगे तो रावण संप्रदाय को आग लगेंगी, रावण खत्म हो जाएगा। फिर सत्युग में कोई एफिजी नहीं बनाते हैं, सब पावन बन जाएंगे। आत्मा में सतो प्रधान की ताकि जो जब ताकत थी ना, तुम जागती ज्योत थे। अंदाजा लगो कितना चेहरा सुंदर होगा। सतो प्रधान ताकि जो ताकत थी ना, पतित बनने से वह ज्योत उजाग गई। आत्मा ही पतित बनी है, उड़ने की ताकत ही नहीं है। पांच विकारों से आत्मा आयरन एजेड बन गई है, ये जरूर समझाना है। आत्मा को जागृत करने वाला एक बाप है। आत्मा को जागृत करने वाला एक बाप है। यह तो सब कहते हैं ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा आएगा। अभी ज्योति स्वरूप तुम आत्मा भी हो, परमपिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। तुम्हारी आत्मा की ज्योत बुझ गई है, बाकी जाकर जरा सा रही है। मनुष्य मरते हैं तो रात दिन का दीवा जलाते हैं, दीवे की बहुत संभाल करते हैं, गिरत खत्म हो जाता है फिर वो डालते हैं। आत्माओं का भी ऐसे है, बाप आकर सबके ज्ञान से ज्योति जगाते हैं। जो जगी हुई कितना समय चलती है, वह तो रात को जलाते हैं फिर गिरत डालते जाते हैं। तुम्हारी अब जो जग रही है, जगते जगते फिर जगी जाएंगे। जो बुझने में 5,000 वर्ष लगता है, पर बाप आकर गिरत डालते हैं। तुम्हारी अब जो जगी है फिर धीरे धीरे कला कम होती जाएंगी, जो तो जानी जाएंगी। तुम जानते हो अभी हमारी जो जगती है, पता चलता है जो तो उजा रही तो थोड़ा ऐसे होता है, जो आत्मा चमकने लग पड़ती है, दिखती है तो। हाँ, फिर सत्युग में घोर घोर घर घर में सोच रहा होगा। भारत की बात है, अब घर तो अभी तो घर घर में अंधेरा है, खुशी है ही नहीं। तुम जानते हो सत्य त्रेता में बहुत खुश थे और खुशी मनाते थे। सबकी जो जगी हुई रहती है तो थोड़ी थोड़ी कमती होती जाती है। इस समय तो बिल्कुल उजारी हुई है, खाद परी हुई है। बाप आकर फिर ज्ञान का गिर्द डालते हैं, जैसे फिर तुम जागती ज्योत बन जाते हो। तुम्हारी ज्ञान चक्षु खुल जाती है। तुम जानते हो अभी हमारी सारी काया खलास हो गई थी, राहु का ग्रहण लग गया है। तुमको काला होने में कितना समय लगता है, शुरू से लेकर थोड़ा थोड़ा होते पर माया का प्रवेश होने से बहुत काले बन जाते हो। अब तुम्हारे ऊपर राहु की दशा है, सबसे करी है राहु की दशा। अब फिर बृहस्पति की दशा बैठती है, क्यों? विश्व के का मालिक बनने के लिए। बृहस्पति की दशा कैसे बैठती है? विश्व का मालिक बनने के लिए वृक्षपति गुरु द्वारा पुरुषार्थ कर रहे हो। वृक्षपति गुरु द्वारा पुरुषार्थ कर रहे हो। वह अविनाशी गुरु किसका? अविनाशी आत्माओं का। वह मनुष्य लोक आत्माओं का गुरु नहीं बनते हैं, वह मनुष्य का गुरु बनते हैं। बाप आकर तुम आत्माओं का गुरु बनते हैं। वृक्षपति परमपिता परमात्मा है। तुम समझते हो अब हमारे ऊपर विस्पत की दशा है, स्वर्ग के मालिक बनेंगे है, हम बनेंगे। विस्पत की दशा बैठी है। ब्रायन क्या समझते हो? बैठी है ना, हाँ, स्वर्ग के मालिक बनेंगे। हाँ, तो अविनाशी सुख रहता, सुख अविनाशी रहता है, जा नहीं सकता, परंतु उसके लिए पुरुषार्थ अब करना है। हम सुखधाम के महाराजा महारानी बने। पुरुषार्थ तो हरे का अपना चलता है। ये है रुद्र शिव की पाठशाला, वह है ज्ञान सागर। तुम उनके पाठशाला में पढ़ रहे हो। भगवानो वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं। अविनाशी आत्माओं का अविनाशी बाप मैं हूं, अविनाशी आत्माओं का अविनाशी बाप मैं हूं। एक है जिस्मानी बाप, एक है रूहानी बाप। दोनों कॉन्ट्रास्ट भी बताना है। रूहानी बाप कब मिलता है? जिसको भक्ति मार्ग में सब आत्माएं याद करती है। जिस्मानी बाप तो है विनाशी, आत्माएं तो विनाशी नहीं होती है। तुम जानते हो हमारा जो लौकिक बाप है वो तो जन्म बाय जन्म बदलते आए हैं। बाप बिगड़ तो बच्चे का जन्म हो नहीं सकता। तुम बच्चों को विशाल बुद्धि मिली है, बुद्धि को देखो क्या सोचने सुनने की बुद्धि है, विशाल बुद्धि मिली है। तुम समझ सकते हो कब से हम दो बाप वाले बनते हैं। सच्चों में एक ही लौकिक बाप होता है, उनको ही याद करते हैं। आत्मा को आत्माओं को उस रूहानी बाप को याद करने की दरकार नहीं रहती है। आत्माओं को सत्युग में एक ही बाप लौकिक होता है। आत्माओं को सत्युग में अपना शरीर भी गौरा मिलता है, प्रारब्ध भोगते हैं ना, इसलिए वहां बाप को याद नहीं करते हैं। तो तुमको ये समझाना है भक्ति मार्ग में एक है विनाशी लौकिक बाप, वह तो हर जन्म में दूसरा मिलता है। तुम आत्मा तो अविनाशी हो, अविनाशी बाप को याद करती हो, भक्ति में भी याद करती हो। शरीर का बाप तो हर जन्म में दूसरा है, पर वो तो अविनाशी एक है ना, उनको याद करते हो। कहते भी है परम पिता परम धाम में रहने वाला पिता, परम धाम में रहने वाला पिता है। लोके पिता को कभी परम पिता नहीं कहेंगे। ये दो बाप का राज समझाना बहुत जरूरी है। रावण का राज भी समझाना है। रावण राज अर्थात पतित राज अब भी है, इसे पतित पावन बाप को बुला रहे हैं। वह अविनाशी बाप है, दो बाप जरूर सिद्ध करने हैं। आत्माओं का भी बाप है, इसलिए पारलौकिक परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। हर जन्म में लौकिक बाप और मिलता है, पर भी उस रूहानी बाप को याद जरूर करते हैं, वह कभी बदलता नहीं है। बाप भी कहते हैं बरोबर तो मुझे याद करते थे, हे परम पिता परमात्मा कब तक तुमको याद करना है, फिर बाप कब मिलता है क्या तुमको, क्यों याद करते हो। बाप ने समझा यह तो भी जान गए हो। जब भक्ति का अंत होता है तब भक्तों को फल देने बाप आते हैं। बाप ने समझाया है सभी भक्तों को मुक्ति जीवन मुक्ति देता हूं। तुम जानते हो सत्युग में एक ही धर्म होता है, उसको वननेस कहते हैं। कहते सब मिलकर एक हो जाएं, परंतु सभी धर्म एक नहीं हो सकते। जब एक राज हो जाता है तो पवित्रता सुख शांति रहती है। भारत में राम राज था जरूर, अब ये रावण राज है, इसलिए रावण को जलाते रहते हैं। तो दो बाप का राज समझाने से जब समझ जाएंगे। अविनाशी बाप तो जरूर है, नई दुनिया रचने वाला बाप ही है। नई दुनिया में बरोबर देवी देवताएं थे, वही नई दुनिया से पुरानी दुनिया होती है। पुरानी दुनिया में कितने जन्म लेते हैं ये तुम जानते हो। ऐसे भी नहीं 84 जन्मों के आधा होने चाहिए, 42 पुराने जन्म में 42 नई दुनिया में ना, कितना बड़ा हिसाब है। नहीं, भारतवासी की आयु पहले 100 वर्ष 125 वर्ष थी, अभी तो 40-50 वर्ष मुश्किल हो गई है। तो आधा आधा हो न सके, 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। बाप कहते हैं तुम्हारे 84 जन्मों का चक्कर अभी पूरा हुआ है, तुम नहीं जानते हो, हम समझाते हैं। 84 जन्मों का राज सवै परमपिता परमात्मा के और कोई समझाए न सके। कितनी बातें आज के मुनि में बाबा समझाई, रोज कितनी समझाता है। तुम बाप से सुनकर खुश होते हो, इतनी वो बातें सुनाता है ना, सुन के खुश होते हो। पर क्या करते हो, वहां जलने के लिए पुरुषार्थ करते हो। खुशी से समझ में आया ना, फिर पुरुषार्थ करते हो। अब यह बच्चों को सिद्ध कर बताना है, कभी हम बेहद के परलौकिक बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। परलौकिक बेहद का बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हम। बाप वह बाप आते ही तब है जब स्वर्ग की स्थापना करते हैं। उनको कहा ही जाता है हेवनली गॉडफादर। जब नए घर की स्थापना होती है तब पुराने घर को तोड़ा जाता है। लिखा हुआ भी है स्थापना और विनाश। स्थापना जब पूरी हो जाएंगी तब विनाश होगा। स्थापना करने वाला है परमपिता परमात्मा इस ब्रह्मा द्वारा। यह भी बाबा ने समझाया है सुख्यमतन वासी को प्रजापिता नहीं कहेंगे। समझो बाबा एक घंटे के अंदर धराधर इतना समझाता है। हम लोग तो अजन एक पांच सुनो तो दूसरी दूसरे सुनो तीसरी, वो समझाने वाला तो फटाफट पटपट। हमारी बुद्धि इतनी क्लियर हो गई, हाँ ये कैच करो। फिर आपस में बैठ के अभी कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, कैसी, वो तो समझता है अभी सब समझ जाए बच्चे, पर बुद्धि इतनी, अभी बुद्धि इतनी अच्छी रखो समझाता जाए और हम खुशी से पुरुषार्थ करें। भाई आंख जवाब तो दो ना, ऐसा अच्छा समझ में आता है। हम करेंगे तो और भी करेंगे ना। मुझे अच्छा लगता है पंछी एक उड़ता है ना तो उसे उड़ते हैं एकदम फटाफट फटाफट, बड़ी अच्छी रौनक हो जाती है। हाँ? और नहीं उड़ते तो फिर क्या होता है, तब क्या खुशी उमंग से उड़ेंगे ना। समय है उड़ने का, चलने का समय नहीं। थक जाते हैं चलते चलते, चलते चलते थक जाते हैं, इसलिए उड़ने का समय है नहीं। ये बाबा ने, अच्छा ब्रह्मा, ये भी बाबा ने समझाया सूक्ष्मतन वासी को प्रजापिता नहीं कहेंगे। वहां प्रजा होती नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा यहां होगा, वही फिर अव्यक्त संपूर्ण बनेगा। वह तो है अव्यक्त, सर्व व्यक्त भी चाहिए। ये बाबा को देखा है साकार में होते पुरुषार्थ बहुत, अव्यक्त रहने का, इस शरीर में है ही नहीं। बाबा के ध्यान पर वो है, मुझे ये ऐसा बनना है। फिर अव्यक्त होना है, दोनों भी दिखाई पड़ते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा यहां भी है, सुख्यमतन में भी है। प्रजापिता तो यहां चाहिए, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भी यही है। प्रदर्शनी में दो राज बाप का राज समझाना है। कायदा तो ये है, एक एक को अलग समझाया जाता है। वहां कैसे किसको समझाएंगे, सैकड़ों लोग आते एग्जीबिशन देखने के लिए, कैसे समझाएंगे। समझाने के लिए एकांत चाहिए, वहां तो बहुत हंगामा होता है। यहां तो तुमको एक डेढ़ घंटा लग जाता है समझाने में, वहां इतनी भीड़ में समझाना बड़ा मुश्किल होगा। अनेक धन वाले लोग होते हैं, कोई क्या कहेंगे कोई क्या, चिप कर तो बैठेंगे नहीं, तुम सुनाएंगे। एक लौकिक जिस्मानी बाप है, दूसरा परलौकिक रूहानी बाप है, तो शांति से समझाना पड़े ना। एक लौकिक रूह जिस्मानी बाप है, दूसरा परलौकिक रूहानी बाप है, वो परमपिता परमात्मा है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे स्वर्ग की। नरक का विनाश तो सामने खड़ा है, मां भारी लड़ाई है ना, बरोबर है ये राजयोग भी है, महाभारत लड़ाई भी है, ये राजयोग भी है। राज्य प्राप्त करने की गीता पाठशाला है, भगवानों वाच है, सभी के दो बाप है। कृष्ण को सभी आत्माओं का बाप नहीं कहेंगे, आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा कहते हैं। माम एकम यानी मुझे एक को याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार स्वयं में ज्ञान का गृत डालते, स्वयं में ज्ञान का गृत डालते सदा जागृति ज्योत रहना है। बाप के याद में रह, राहु का ग्रहण उतार देना है, ये अपन को काम करना है अपने लिए। बाप के याद में रह, राहु का ग्रहण उतार देना है। दूसरा रूहानी और जिस्मानी दो बाप है, यह पहचान हरे को देकर बेहद के वर्षे का अधिकारी बनाना है। वह अपना पुरुषार्थ व सेवा वरदान, दुख के चक्करों से सदा मुक्त रहने, दुख के चक्करों से सदा मुक्त रहने और सबको मुक्त करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। जो बच्चे कर्म इंद्रियों के वश होकर कहते हैं आज आंख ने मुख ने व दृष्टि ने धोखा दिया, आंख ने दृष्टि ने मुख से धोखा दिया, अर्थात दुख की अनुभूति होना। दुनिया वाले कहते हैं चाहते नहीं थे लेकिन चक्कर में आ गए। लेकिन जो स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे हैं वे कभी किसी के धोखे के चक्कर में नहीं आ सकते। दुनिया की बात अलग है। बाबा कहते मेरे बच्चे कभी कहे आंखों द्वारा मुख द्वारा या दृष्टि द्वारा कोई धोखा हो गया, मेरे बच्चे नहीं आ सकते। स्वदर्शन चक्करदारी बच्चे कभी किसके धोखे में चक्कर में नहीं आ सकते, वह तो दुख के चक्करों से मुक्त रहने और सबको मुक्त करने वाले मालिक बन सर्वकर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले हैं। स्लोगन अकाल तख्त नशीन बन अपने श्रेष्ठान में रहो, अकाल तख्त नशीन बन अपने श्रेष्ठान में रहो तो कभी परेशान नहीं होंगे। ओम शांति। अच्छा भी गोपी कल जो आपने एक्सपीरियंस लिखा था ना सबको बता दो थोड़ा। अच्छा है, कोई बड़ी बात नहीं है, पुरुषार्थ कैसे करना है। दूसरा भी कोई बताने चाहे बता सकता है। फिर मेरा भाई भाई उठो नहीं, सैटरडे है, मेरा भाई 5 मिनट आए सबको अपना थोड़ा सा अनुभव सुनावे हैं। ओके आओ, योर माय ब्रदर।
ओम शांति। आज शाम को आप सबको याद हो 7 बजे यहाँ योग ऑडिटोरियम में,
चाहे आ सकती है तो आए।
7 बजे ऑडिटोरियम में दादी योग कराएंगे और 7:30 बजे टैलेंट शो रखा है। हम सभी अच्छी तरह से दादी को बुलाएंगे और कल शाम को यहाँ बाबा के घर में विशेष पब्लिक प्रोग्राम है दादी का 7:30 बजे पॉजिटिव थिंकिंग, और फिर दादी का आगे का प्रोग्राम आपको बताएंगे। थैंक यू।
बोलो, बहुत अच्छे नसीब वाले हो, कैसे आगे सारी क्लास से मिलना होता है। सुनो, पहले तुम सुनाएंगी, पहले ये सुना रहे हैं ना,
पहले
लेट मी इंट्रोड्यूस। ओम शांति।
परिचय दो उनका।
दिस इज ब्रदर Juan Carlos एंड आवर स्वीट सिस्टर, न्यू सिस्टर Adriana, एंड दे आर बोथ फ्रॉम मेक्सिको, having been in very close contact with the Brahma Kumaris, Baba's family there in Mexico. I think Juan Carlos, you've been to Madhuban in 97, and this is Adriana's first time here into this big unlimited BK family, and they have come from Sweden yesterday, and Juan Carlos was at meditation at 4:00 yesterday morning in Oxford, and had this thought that he'd like to see Daddy. And it happened. They came last night for class. They met Daddy at 9:30. They went back to Oxford and came back first thing this morning to be with Daddy for Murali and class. And then they're going to go back to Mexico this afternoon. And I'll leave Juan Carlos to give his own introduction of what he does in Mexico, and then also share his experience of his time spent with Daddy, being here, what he's taken. And also I'll ask Adriana to share a few words. Is that okay? Yeah.
Om Shanti.
Say Om Shanti. Respond karo.
Om Shanti. Well, I feel very fortunate to be with you today. And it was not prepared for me, but I will start mentioning that my first contact with Brahma Kumaris, it was also not prepared for me. I remember when I was working for the state government in 97, I was working as advisor in government innovation in the Guanajuato state. Is the state in the center of the country. The governor was the former president of Mexico, Vicente Fox. And the second year of his administration, he organized a big congress with the Gorbachev Foundation. And one of the roundtables was the crisis of the spirit. The organizer of this roundtable invited a representant from Brahma Kumaris, and she was Janti. So the first contact with Brahma Kumaris was with Janti, and her words caused a big impact in the attendees. And during the conversation she had with Governor Fox, she invited him to participate in a big conference in Montauk called the Spirit of the 21st Century. Fortunately, Governor Fox couldn't attend it, and I attended it. I was participating on behalf of the Guanajuato state. I remember, I have wonderful memories of this first contact in India. I remember the meditation on the rock. I remember a very deep conversation with many people from the Brahma Kumaris organization. I met Ken O'Donnell, maybe some of you know about him. He is the administrator of Brahma Kumaris for South America. And I was in charge of the organization of an international conference in the state about values and principles in the public sector. This topic is not common in government, but this was the perspective and the values and the conviction of Vicente Fox. I invited Ken O'Donnell to Guanajuato State, and he suggested in 98 to participate in an SML in Global Retreat Center in Oxford. Of course, since the first time, I met Daddy Yankee, I met Yanti, and I had very deep conversations about these topics. And that's why I have been in contact with Brahma Kumaris. After that, I participated in A Call of the Time in 2003. And after that, we invited Daddy Yankee with some very good friends of us who Adriana and me met for the contact with Brahma Kumaris, Yolanda and Carmen from Mexico. And they organized the Call of the Time in Mérida, where we had the opportunity to have the presence of Daddy Yankee, Yanti, Gayatri and Mohini from New York, and Judy Rogers. So we had a commitment in Stockholm, and we decided to spend some days in London first. We decided to go to Oxford, and we couldn't attend the session with Daddy Yankee in Oxford. And we were very sad to hear that she was in Oxford. And suddenly yesterday, when we was driving to the downtown in Oxford, someone called our friend Al, and he mentioned that Daddy Yankee was having a session yesterday at night, and we were invited. So we feel very fortunate. We had a conversation with Daddy Yankee, and she invited us to be with you today. In perspective for the future, I think that, this is a special message for me, because I confirm that I have a mission in politics, in the public sector, and in the promotion of this kind of concepts and values in the public sector, in the politics, in this kind of leadership, different that we as a world need very profoundly. So we feel very fortunate to be with you, and thank you for your attention.
Bolo, Rat Gobiao. अभी समझते हैं पूरी की लाइन ऐसी क्लियर है जो कैचिंग पावर ऐसी होंगी जो तुम चाहते हो ना मिल रही दुनिया को इंस्ट्रूमेंट बनकर दे सकता है आज फिर एक घंटा देंगी इसको भाई ताली भाई इंस्ट्रूमेंट ऐसा बनेगा प्रेजेंट समय दुनिया को ऐसी आत्माएं चाहिए बाबा कहेगा तू मेरा बच्चा है तू मेरे मैं इशारा दूंगा ऐसे कर तुम कहेंगे वो कराने वाला मैं हाँ रेडी और कुछ नहीं रेडी है जब बहन क्या करेंगे अंदर से क्या अंदर से आता है मैं जो क्या करने का है
well I'm not prepared for this.
तुम जाना नहीं prepare.
How did she say? Just share from your heart.
बोलो बोलो. Okay. Oh, नहीं अच्छा ठीक ओके कोई बात नहीं. प्यार में आ गई है. ओके ओके no no don't worry. अच्छा अच्छा. ओके कोई बात नहीं क्या कर मैं ये देती हूँ नहीं ना ये
She's going to give you her. There you go.
अच्छा लेके जाओ फिर ठीक है. ओके पांच मिनट.
दादी इसको एक कुछ बोलना है.
कुछ क्वेश्चन है?
नहीं उसको कुछ बोलना है. Go ahead.
बोलो कुछ कहना है.
You want to say something? Yeah. Yeah, go ahead.
I'm going to speak to say something for on behalf of my wife. is that we have two children, two girls, and always Adriana and me discuss about the future of children, and we discuss about the world that we are creating for them. Sometimes, and I mentioned yesterday to Gopi. That I really feel very strong because I know that I have a big and very very strong support on you, and I never feel alone because I have very good friends, and I have found the strong support and knowledge about many things the world needs today. And I hope to work with you in many, many projects. Thank you.
Okay?
Thank you.
Achha, chalo baitho. हाँ तुमको भी बता आओ बैठो अच्छा मैं गोपी को क्यों बुला रही हूँ अभी है जो परिवर्तन कोई करने चाहे ना तो बाबा एकदम तैयार बैठा है बच्चों को 100 गुना मदद करने के लिए तो मेरी भावना है समय का और बाबा का फायदा ले लो तो कभी गोपी ने कभी लिख करके दिया था अच्छा तो मैंने कहा सबको सुना ले वे ऐसे कोई भी बहन या भाई आने चाहे आओ क्योंकि परिवर्तन की घड़ियां अब भी बाबा जो कहता है ना और मैंने आप लोग कहा है कि ये मैना जो है ना खास बाबा की इतनी स्पेशल मदद है जो उसका फायदा लेना चाहिए सच्ची दिल से साहब को राजी कर लो पास्ट इज पास्ट बाबा कहेंगे बच्चे भूल जाओ याद भी नहीं करो मैं बैठा हूं ना तो ऐसे मेहरबानी है हमको बाबा की उसका फायदा लेना है बताओ गोपी ऐसे कोई भी समझे मुझे जीवन में अभी बाबा परिवर्तन लाने की घड़ी आई मैं आपके सामने हाजिर हूं
दैट इज वेरी गुड इट्स ब्रिंगिंग सरप्राइजेस Every time Daddy comes, she always carries a very powerful message for me. And I had written to Daddy yesterday, and I'll try and remember everything I had written in inspiration. She's been to London now. This is her third visit since February. And I was sharing how, when she came on her first visit, she came as a doctor. And what does a doctor do? It diagnoses an illness. And tells you which part of the body your illness is in. And her whole theme when she first came was look into the chit, look into your memory track, look into that subconscious area, and that's where the seed of all illnesses arise. And for me, that gave me a focus point to understand what is it that gets in the way when I, although I have very high intentions, very high aims, but what gets in the way is what lies in the chit. And then the second visit that she came, not so long ago, she came as a surgeon. And as a surgeon, she went straight for the jugular and she exposed the tumor inside. And she said, this is what it looks like. And I remember one particular session we had with Daddy when somebody had asked Daddy the question, there are people in the world. And yes, okay, some people commit mistakes, some people commit sins. But what are the sins that a Brahmin commits? And Daddy Janki exposed every thought, every feeling that is a sin for a Brahmin. To have thoughts of self-doubt, to have thoughts of weaknesses, to have thoughts of... And it was like a very powerful mirror for me at that time. That these thoughts that I keep inside myself and think that it's okay to have them and it's okay to be like this and I'm not good enough, I'm actually committing a subtle sin and suppressing my goodness. And so really the deep feeling that she was reaching deep in the soul and extracting these tumors of useless thoughts. And then this third visit, I feel she's come as a nurse. You know, when someone's been in ICU, an intensive care unit for a while, you need the nurse to help you with recovery and rehab. And she's doing in a checking in. She's not just left the patient. She's checking in to make sure that I'm on track and don't kind of use my old sanskaras again. But very much I'm feeling that Daddy's injecting the strength and the focus on Baba absolute focus on Baba, to know that who is in charge here of everything. And so these were kind of three themes coming through. And I remember one time a conversation with Daddy when, you know, things happen in Brahmin life, and often our biggest obstacle in achieving what we want to achieve and becoming like Baba is our own ego. And one time I'd asked Daddy this question of, how does she do it? How does she manage to keep going and so tirelessly? And it's as if she's being moved, that, you know, she's not having to do anything. The task has doubled, everything has doubled. And Daddy's answer struck me very deeply. She said, you use your ego. Daddy doesn't use her ego. Daddy uses Baba to become like Baba. And Baba uses Daddy to enable the task to be done. And for me, that set a very powerful focus. Yes, we are on an unlimited field of service, and there may be a tendency to become task conscious, but the awareness that what's my aim and why am I doing this is to become that example and to become like Baba. And I always take a great deal of inspiration and want to learn what Daddy's secrets are of her limitless energy and unlimited tiredness. And really, it's in these two words that Daddyji reminded us of, which is a clean heart and an honest heart. That every speck of dirt inside, on any level, eventually becomes an obstacle in my path, in what I want to do and achieve outside. And so the only way is in and up. And so those were some of my inspirations that I took from Daddy. Thank you.
Aur koi yeh nahi chahta hai ban bhai. Koi ban ya bhai ya nahi chahte hai. Nahi. Rakho hai mat. क्यों सभा में आने से ताकत मिल जाती है नहीं है मत ऐसे ही चलना है हां ओके चांस दे अभी एक मिनट और देती हूं जिसको आना हो आ जाए बहन आए भाई आए बस अभी से परिवर्तन हुआ बाबा आपके हाथों में हाथ है मैं आपके साथ हूं वो कहते हैं मैं तुम्हारे साथी हूं ये मुझे बहुत बाबा की बात लगी हुई है अभी तुम बाबा के साथ से साखी होकर के सबके पास्ट के पास्ट करके सभी आत्माओं के गुण विशेषताओं को देख सर्व गुरु संपन्न बनने की धुन में लगी रहो और कुछ नहीं करो सबके गुण विशेषता है किसी के अवगुण को दिल में मन में न रखो तो दिल मन में क्या हो एक बाबा और बाबा का डायरेक्शन जैसे बाबा चलाता है ना वैसे मुझे चलने में कहते ऐसे ऐसे चलो मैं ये भी नबी कहता है मुझे साथ चलना चाह बड़ा अच्छा लगता है कदम पर कदम बाबा कहते उठाते चलो सिंपल बातें हैं तो सिंपल तरीके से मैं चलेंगी तो औरों को भी चलना आसान हो जाएगा अगर मैं ही कभी ऐसे ऐसे होंगी तो और बेचारों का क्या हाल होगा तो बाबा कहते इतने समझदार बनो ना बाबा को देख करके चलो मेरा मैं फॉलोअर नहीं बनाता हूं पापर से ऊंचा बनाता हूं ये नहीं कहता हूं मेरे को फॉलो करो पर डायरेक्शन पर चलो तो बाप जितनी बाप की महिमा है बाप कहते ऐसी तो महिमा गाते नहीं है जरूर तो नहीं है पर बाप की महिमा सो तुम बच्चों की महिमा हो जाए ये बाबा की इच्छा है आना है ओके आना है आना है आओ बस पूरा करेंगे अभी, परंतु ये चांस मिलता है.
ओम शांति. दादी ने बहुत अच्छी तरह से एक मौका दिया, क्योंकि जब मैं यहाँ आने के लिए दादी जी से मिली थी मधुबन में,
इंग्लिश में बोलो
ट्रांसलेशन मिल रहा है,
इंग्लिश में बोलो
दादी, ट्रांसलेशन मिल रहा है सब,
इंग्लिश में बोलो.
ओके. When I started from Madhuban and before coming, I was meeting Dadiji, and Dadiji has given me a very clear direction that before going to US, you have to come to London for 1 week. So at that time, I didn't think in this direction that this will be something very special, extra moments of realization will be for me. And my aim was mainly to study, and I was invited for scholarship, and other was PhD. But I was thinking what to write, because it was mainly on Brahma Kumaris and universal human values. But I think Dadiji has given me a very, very clear, you know, instructions. Actually, before doing that PhD, I have to also start PhD within myself. That is the research, and Dadiji has given me that day a very clear, you know, inspiration that we have to go within first and checking very, very deeply. We have to check. Sometimes in Madhuban, as Dadi is saying, we become sometimes busy. We attend classes, and sometimes we do bhatti also. But then, you know, you feel like few things you wanted to get rid. You are in some percentage, you are successful, but little things, you know, as Dadiji said, very, very subtle. So I feel from last 5 days, meeting Dadiji and listening to Dadiji is just like, you know, checking, doing research and checking yourself very, very deeply and becoming very, very light and catching the inspiration of Baba. So I'm feeling very lucky. I thought that sometimes it is not happening in Madhuban. Of course it is happening in that way, but now it is becoming very, very strong, and now I can understand why Dadiji is coming again and again to London, you know, inspiring everybody and giving power. So I thanking Dadiji for inspiring me deeply. So then, and the one thing which I really got strengthened here, which Dadiji said, past is past, and the Dadi is that class, forgive and forget. And Dadiji has given in such a subtle way that, you know, this point really given me a lot of realization. If we really forgive others from our deeper heart, then only that person is going to forgive me. If not, I'm not forgiving, then that person is not going to forgive. So this was a really a deeper research and realization. Thank you, Dadi. Om Shanti.
Om Shanti. Always I come out, it's always shaking and nervous. And this time, Baba through Dadi keep on inspiring, so I say, I have to come out to say. Anyhow, thanks a lot to be here in London now. It's more than 2 over years. And I will have to say, I'm very, very fortunate that Baba through Dadi called me to be here and break so much of the body consciousness, especially in the work-wise, you know. Dadi just let me go. Because in Malaysia, I was working as a sport massage therapist and working with a lot of rich people and minister, ex-minister, even the prime minister before he was a prime minister, ex-deputy prime minister. But from here, Baba just strip and strip and strip and bring me down to the earth and build back my foundation again. I really have to thanks Baba and thanks Dadi to call me here. And everything is working through if you just open your heart and surrender to Baba and just follow what Dadi is guiding. I remember the first time I didn't listen to Dadi's advice, that was 1983. Dadi said, don't go back to Asia. I mean, I was spiritual birth in Switzerland. Don't go back to Asia. Maya will swallow you. At that time, I was very new. Just a few months in Gyan, I don't believe that what is Maya. I was so intoxicated. Really, Maya swallow after a few years. You know? It's what Daddy have shared just now, you know, don't see the weakness. Don't see the weakness, don't go into any other business. Just pay attention, study, and enjoy yourself. But Maya make you see the weakness, little thing from others, especially when you live with Brahmins. Live in center and know nothing about anything. And Maya just come out. Anyhow, now this time Daddy call me, and then I say yes, but inside still fighting. Maya say, fight with Daddy, fight it. No, yes. But at last, I'm here, and I can see over these 2 years benefit. For the many years that I've lost, I've really gained a lot. And really, I've now learned how to do little thing and be happy. Arrange the chair, do night duty. Now night duty to me is heaven. It's paradise, not suffering. It's enjoying every moment, you know. Especially with no one to play that role. That is the best. You see? So beautiful. And now I'm overcoming the sleeping problem. That is, say, keep silent. And I remain silent. Anything come, just be silent and detach. And then I can rest. Same thing, the problem, the noise of the police car, ding-dong, ambulance, and then all the fire station. But I don't hear it now. It go inside here and it go out. It wake me, I just open and then... So the beauty. So I enjoy now very much here and to be with a big family. And I really see every one of you give so much fragrance. Of course, sometimes you say something different which I don't understand or a little bit irritation. But very fast, I don't want to be in sorrow. I want to be in happy. This is why I'm here. So I give it to Baba. I have to say thanks a lot. And now Daddy keep on coming back. So much fortunate I have, Daddy. You know, in Madhuban, to see Daddy so difficult. So many people to see Daddy. I want to go near the car, block, cannot go. Daddy, so difficult. Here, take almond, shake Daddy's hand, take Tristy, Amrit Vera. Bye-bye. Thank you, Baba. Thank you, Daddy. Thank you, the family. Om Shanti.
Om Shanti.
Shanti.
तो प्रतिभा बहन भी आओ तो मिल मिलो सबसे अच्छा बैठ जाए हाँ ओ
About a month ago, I wrote you, Daddy, a letter in the email, which I don't usually do, because I had a strong pull to just be in your company and receive this powerful inspiration. But I knew that I missed you because I didn't come to the European teachers retreat but to the youth retreat. And so I knew, okay, this is the benefit in the drama and I have to take this subtle support and just create this very strong connection with Baba. And then I heard that Daddy is coming. So I understood it was a pure desire in my heart. And yesterday you clarified something for me that sometimes I wasn't sure what is meant by honesty because I can get a bit confused with myself. And then you said that honesty is to have pure desire, that when the heart has pure desire, and I often experience that I just have the really... just the pure desire, the thought that I want to achieve something even if I can't see myself there. And then it's Baba's magic. So my inspiration now is I also saw in the past few days how it is attachment and some form of liking something that distances me from Baba. And my aim is to take everything from Baba now and to feel that closeness. So I'm checking this honesty and cleanliness in checking my the desires in my heart. Oh, I'm Asif from Israel. Going back to Israel tomorrow.
Om Shanti. For those who do not know me, I'm Sister Pratibha from Kenya, Africa, and have been with Baba for the last 34 years, ever since service in Africa started. And I'm on my way to Poland to conduct a Brahmin retreat. But it's always so wonderful to pass by London and meet the family here. It's been a long time, it's been 2 years I haven't been. But it's always like we've met one another, because Madhubani is of a confluence age. Recently, service in Africa has just expanded tremendously, and we are all over Africa. And we have two things. One is a lot of pleasure and happiness in service, but the other thing is also challenges. But confluence age, Baba's support actually doesn't even let us feel that we are going through all these challenges, and wonderful experiences are there. But I was just sharing with the family in Nairobi, that the new field of Serve Africa is so challenging, because the countries are quite broken from the previous countries of service. And in this field, we have to be very, very careful. One is, of course, we want to bring new souls to Baba and connect them to Baba. So we have to do that service, the service of sound and action and all that. But the other service is that before you go to that field, you have to serve yourself. And you really have to have a very clear checking. How much tapasya do I have? And how much self-development I have, self-attention I have, because that's the only dharana which would help you in this difficult field. Of course, Dadi always mentions nothing is difficult, but this is Iron Age, and that's the situation. If I go into the depth and expansion of what the facilities are, you would know that it is difficult. But it really helps us, because we have to have self-focus. And the third service is the instrument souls who are based there. They also need a lot of enthusiasm and strength to carry on with that field. And so every now and then we need to actually go and, you know, rejuvenate them or recharge them also. It's not a joke. And so it's a wonderful field to work in confluence age. And one dharana which I have created for a couple of years now is that this is my last moment. Last moment means wherever I go, I want to keep myself ever ready. I need to do service in such a way that, for example, if I am talking or interacting with someone, I only want to leave impressions which I want to carry on, you know, not something which would haunt me or trouble me or create waste thoughts and feelings. And so it's such a lovely feeling, although it's not maybe the last moment, but it's like keeping yourself ever ready. And that's a wonderful feeling. It's a very light feeling. I just arrived a day ago, and I'm very happy that Dadi is here when I'm here. So that's like, you know, a lot of fragrance in the visit, but a lot of love and remembrance from Africa to the family here. Om Shanti.
ज्योति जगाओ, ज्योति जगाओ, विश्व शांति की।